आज देर हो गई थी उठने में और अंशु का स्कूल भी था, तो आरवी अंशु के पास चली आई। पहले कमरे को साफ किया, फिर अंशु को जगाया। कुछ देर गुनगुनाने के बाद वो उससे लिपटकर सो गई। फिर अपनी उनींदी आंखों को हल्का सा खोलकर उसे देखा और मुस्कुराकर वापस उसके सीने में अपना सर छुपा लिया। उसका प्यारा सा चेहरा और उस पर उसकी मोहिनी मुस्कान, वो इतनी क्यूट लग रही थी कि आरवी को उस पर बहुत प्यार आने लगा। उसने उसके माथे में चूम लिया, फिर उसको अपनी गोद में उठाए ही बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, वेका बेटा, मॉर्निंग हो गई है। अगर अभी आप नहीं उठेंगी तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगी। और अगर अभी अंशु ने मम्मा की बात मानी और जल्दी जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो गई तो आज मम्मा अंशु को डैडी से मिलवाने लेकर चलेंगी। आरवी ने जैसे ही शान से मिलवाने की बात की, अंशु ने झट से अपनी आंखें खोलकर उसे देखा और एक्साइटेड होकर बोली, क्या आप अंशु को डैडी से मिलवाने चलेंगी? हमारा बच्चा अपने डैडी को इतना मिस करता है, इसलिए मम्मा ने सोचा कि आज वो खुद आपको स्कूल से लेने चलेंगी और उसके बाद आपको डैडी से मिलवाने लेकर जाएंगी। चलिए, अगर आपको आज डैडी से मिलना है तो जल्दी जल्दी नहाकर रेडी हो जाइए। आरवी की बात सुनकर अंशु का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने झट से उसके गाल को चूम लिया। आरवी लबों पर मुस्कान सजाए उसको लेकर बाथरूम में चली आई। कुछ देर में उसको नहलाकर तैयार करके नीचे पहुंची। तब तक अनुपमा जी ने नाश्ता और अंशु का लंच दोनों तैयार कर दिया था। अनु ने उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया तो उन्होंने भी उसको प्यार किया। उसके बाद तीनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर आरवी अंशु को स्कूल छोड़ने चली गई। जब वो वापस आई तो अनुपमा जी तैयार हो रखी थी। आरवी ने उन्हें तीखी निगाहों से देखते हुए पूछा, कहाँ जा रही हैं आप आज? बस, बहुत दिन से आराम कर रही हूँ तो सोचा आज जरा स्कूल चली जाऊँ, इतनी छुट्टी लूंगी तो पैसे कटेंगे। अनुपमा जी की बात सुनकर आरवी की भौहें तन गईं। उसने उनके हाथ से बैग लेकर सोफे पर रख दिया, फिर उनको देखकर गंभीरता से बोली, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। काम से ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है और मैं आपको आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। बड़ी मुश्किल से तो अब आपकी हालत कुछ ठीक हुई है, कुछ दिन और आराम कर लीजिए। वैसे भी मैं बस कुछ दिनों के लिए ही आई हूँ, फिर मुझे अंशु के साथ वापस जाना होगा। मैंने सोचा था कि कुछ दिन आपके साथ वक्त बिताऊंगी, पर यहाँ तो आपको मुझे छोड़कर स्कूल जाने की पड़ी है। जब आप ही नहीं रहेंगी तो मैं यहाँ अकेली रहकर भला क्या करूँगी, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अगर अभी आप कहीं गई तो मैं भी वापस चली जाऊँगी। आरवी ने अपना फैसला सुना दिया। वो जानती थी कि अनुपमा जी से अपनी बात मनवाने का यही एक तरीका है, तो उसने उसी का इस्तेमाल कर दिया और मुँह फुलाकर नाराज़गी से उन्हें देखने लगी। अनुपमा जी उसकी माँ थी, भला वो उसकी नौटंकी कैसे नहीं समझती। वो उसके नाटक को पल में पहचान गई और उसके कान पकड़कर ऐंठते हुए बोली, बहुत नाटक करने लगी हैं आप, अपनी माँ को धमकी दे रही हैं। आरवी ने मासूम सी शक्ल बनाकर उन्हें देखा और मुंह बिचकाते हुए बोली, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपको धमकी दूं? मैं तो बस आपको बता रही हूं कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी और पूरी ठीक होने से पहले स्कूल गई तो मैं भी वापस चली जाऊंगी। उसने एक बार फिर उनको धमकी ही दे डाली। इस बार अनुपमा जी ने उसके कान को छोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, अपनी बात मनवाना खूब आता है आपको। आरवी भी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और उनकी गर्दन में अपनी बाहों को लपेटते हुए बोली, वो तो मुझे हमेशा से आता है। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और वो कभी मेरी बात नहीं टालेंगी। चलिए, अब आप बैठिए, मैं घर का काम कर लूँ। अगर आप खाली बैठकर बोर हो जाती हैं तो आज से ट्यूशन के बच्चों को बुला लीजिए, पर उन्हें आप नहीं मैं पढ़ाऊंगी। आप बस अपनी नातिन के साथ बैठकर आराम कीजिएगा। आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। चलिए ठीक है, हम कोई काम नहीं करेंगे। वैसे भी हमें हमारी नातिन से फुर्सत ही नहीं होती, बहुत कम मौका मिलता है हमें उनके साथ, तो हम अपना सारा वक्त उन्हें ही देंगे। अनुपमा जी ने मुस्कुराकर अपनी बात कही। उनकी बात सुनकर आरवी ने फिर से उन पर हुक्म जमाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, दोपहर से पहले का वक्त आप अपनी बेटी के साथ बिताएंगी और उसके बाद आप अपनी नातिन के साथ रह सकती हैं। अनुपमा जी ने मुस्कुराकर हामी भर दी और वहीं सोफे पर बैठ गई। आरवी भी उनसे बात करते हुए घर के काम निपटाने लगी। शान आज भी अपने वक्त पर ही उठा। नया सवेरा अपने साथ नई ऊर्जा लेकर आया था। आरवी से कल हुई मुलाकात उसके दिल की गहराइयों तक उतर गया था, एक सुकून सा था दिल में। वो उठकर आज जल्दी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि आगे के प्लान की तैयारी भी तो उसे देखनी थी। रेहान को उससे मिलने के बाद सेट पर भी जाना था। निया नशे में धुत अब भी उसी प्राइवेट रूम में बेहोश पड़ी थी। अब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। जाहिर सी बात थी, कल उसने इतनी ड्रिंक की थी तो अब उसे हैंगओवर हो रहा था। वो उठकर बैठ गई और अपने सर को अपने दोनों हाथों से दबाने लगी। अचानक ही उसके दिमाग में कल की बात घूमने लगी। उसको याद आया कि वो शान के साथ थी और दोनों यहाँ रूम में साथ में आए थे। ये याद आते ही उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर खुद को देखा तो वो तो बिल्कुल उसी कंडीशन में जिसमें यहाँ आई थी, मतलब उसके और शान के बीच कल रात कुछ भी नहीं हुआ। ये सोचकर उसने तुरंत अपनी निगाहें घुमाई तो पूरे कमरे में वो अकेली ही थी। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, पर उसको बिल्कुल याद नहीं आया कि कल रात क्या हुआ था। वो तो यहाँ शान के साथ थी, फिर अब अकेली कैसे है? और शान अगर रात को यहीं था उसके साथ, तो अब वो कहाँ है? उसने अपना बैग ढूंढा जो बेड से नीचे गिरा हुआ था। जल्दी से उसमें से अपना फोन निकालकर उसने सीधे शान को फोन लगा दिया। शान इस वक्त अपने केबिन में था और उसके सामने ही रेहान बैठा था। अभी ऑफिस का टाइम नहीं हुआ था तो वो दोनों ही थे सिर्फ वहाँ, और उनके सामने कुछ फोटोज और एक पेन ड्राइव रखी हुई थी। शान का फोन बजा और जैसे ही उसने निया का नंबर देखा, उसके लबों पर रहस्यमयी शातिर मुस्कान तैर गई। उसने कॉल कर दिया तो एक मैसेज जो उसने पहले से टाइप किया हुआ था उसको सेंड कर दिया। निया उसको दोबारा फोन लगाने ही जा रही थी कि शान का मैसेज उसके पास पहुंच गया और वो उसे पढ़ने लगी। टू बी कंटिन्यूड।